اکرم، بہت بہت شکریہ اس قرآن کے لیے جو تم نے جزدان بنایا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، خدا قبول کرے.
خدا ہم سے کچھ قبول نہیں کرتا، سلامت رہیے.
اگر قبول نہیں کرتا تو نہ خوبصورت بنتا نہ تمام ہوتا.
بس قبول نہیں کیا اس لیے کہ میں اس کے کناروں کو گوٹا لگانا چاہ رہی تھی، لیکن ہمت نہ ہوئی.
خدا تمہیں سمجھے.
دادا جان، آپ نے اشتہار دیکھا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اشتہار چھپ گیا ہوگا. ابھی کوئی فون کرے گا اور کہے گا کہ شام کو دکان دیکھنے آئیں گے، چلیں شام تک دکان میں رہتے ہیں.
تم یہی رکو، فون کے جواب دو.
دادا جان، آخر کیا ضرورت ہے دکان کے عیب بتانے کی؟ ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، خود اچھی طرح دیکھ لیں گے، چھان پٹک لیں گے، ہمارا بھی کام ہو جائے گا. دادا جان کو کون سمجھائے.
بابا میں گاڑی میں ہوں.
ناشتہ کر لیا، جلدی جلدی یونیفارم پہنو.
ماما.
ہاں.
کوئی کام؟
آج بھی بابا کے پاس دفتر میں رہو گے؟
ان کو بنگلے پر لے کے جانا ہے، ملاقات کرانی.
اپنا خیال رکھنا.
خدا حافظ.
خدا حافظ. مریم، مجھے یاد دلانا کہ 10 بجے دوا پینی ہے.
جی بیگم صاحبہ.
واہ واہ، صبح بخیر، باہر آئی ہیں.
ڈاکٹر، رامین کو کیا ہوا اور کیوں کیوں تمہارے صاحب رامین کو اپنا کام نہیں کرنے دیتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
نہیں کرنے دیتے؟ یہ کہا سنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ دور ہی رہیے ان سب سے، صاحب بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح حل ہوگا یہ سب کچھ.
یہ کہا سنا رامین کی شادی کرنے یا نہ کرنے سے تو تعلق رکھتا ہی نہیں ہے، ہے نا؟
شادی؟ شادی کب سے جرم ہو گیا کہ صاحب اسے اپنا کام نہیں کرنے دے رہے؟
بس شاہ رخی کی بیٹی کا معاملہ نہیں ہے.
شاہ رخی کی بیٹی؟ وہ تو رامین کے قابل ہی نہیں ہے.
وہ موٹا گنجا سا؟
نہیں، اس کا باپ گنجا ہے، فرم کا سیکرٹری.
وہ کون ہے؟
صاحب کی فرم کے سیکرٹری. صاحب کی سیکرٹری آپ نہیں جانتی؟
ہاں ہاں ہاں، وہی جس کا باپ نشہ کرتا ہے.
خدا کی پناہ، بات گھر تک آ گئی ہے.
بات؟ کون سی بات؟
ماما جانی، یہ صبح صبح آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ اگر مجھ سے باتیں اگلوانا چاہتی ہیں تو کہہ دیتا ہوں کہ صاحب اتنے کچے نہیں ہیں. اگر رامین نے آپ کو شاہ رخی کی بیٹی سے شادی کے بارے میں کچھ بتایا ہے تو میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ اس خاندان کی عزت و آبرو کی خاطر آپ اسے سمجھائیے.
عزت و آبرو تو اس گھر کی آپ کی تشریف لاتے ہی چلی گئی، اب میں اسے کیسے واپس لا سکتی ہوں؟
یہ صلہ ہے محبت کا. اے کاش میں نے روزہ رکھ لیا ہوتا، دماغ پکا دیا.
ہیلو ہیلو قاسم، میں ہوں جاویدیان، فون اٹھاؤ. آخر کیوں 2 روز سے جواب نہیں دے رہا ہے؟
میں کیا جان، مجھے بتائیے تو صحیح کیا کام ہے اس سے.
جا کر اپنے سپوت کو اٹھاؤ اور بلڈنگ بھیجو.
چلا گیا. جلی، میں رامین کے بارے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں. جاننا چاہتی ہوں کہ کیوں اس کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہو؟
تم سے کس نے کہا، رامین نے یا اس نے؟
مجھے کیا پڑی ہے؟
کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، میں نے اپنے بچے کی حالت دیکھ کر بھانپ لیا ہے.
اب بات کے لیے رہنے دو.
جلیل، میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. جلیل!
ماما جانی، میں نے کہا تھا نا، دیکھیے.
بیگم صاحبہ، یہ آپ کا شربت.
نہیں چاہیے.
ایکسکیوز می، گھڑی ہوگی آپ کے پاس؟ وقت کیا ہوا ہے؟ लाइसेंस की मुश्किल है या सरमाए की?
कुछ नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम है।
दहेज के साथ बुरा लग रहा है।
क्या मतलब?
कुछ नहीं, मैंने यूं ही आइडिया लगाया था, लेकिन मेरे ख्याल में जोर जबरदस्ती से बात मनवाई जा सकती है, मगर एक साथ उनके सामने मत आओ। अगर इस तरह रूबरू खड़े हो गए तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी।
मशवरे का शुक्रिया।
शुक्रिया, मुख्तसर ये कि हम जवान बच्चे एक दूसरे की बात अच्छी तरह समझते हैं।
लेकिन बाबा से मुझे कोई मसला नहीं।
वाकई?
हाँ।
सलाम साहब।
सलाम
साहब, ये सामान आपकी गाड़ी में रख दूं?
नहीं नहीं नहीं, मेरी गाड़ी में नहीं, जावेदियान साहब की गाड़ी में, आपका है।
शुक्रिया।
मेरे ख्याल में तुम्हारे डैड ने हशमतियान साहब को शीशे में उतार लिया है।
लगता तो है।
यकीन करें साहब, इस बम ने नाक में दम कर रखा है।
माशासन, पहले मेहमानों को चले जाने दो, बाद में।
मैं तो फोन उठाऊंगा और बेगम साहिबा से शिकायत करूंगा।
मुझे नहीं लगता कि अश्पतियान साहब किसी को भत्ता देते हो।
बहुत जरूरी नहीं, परेशान ना हो। ए, मेरे ख्याल में घरेलू जंग है।
हमने तो सोच विचार कर ली है, बाद में फोन कर। अगरचे रस्म रफाकत ये नहीं,
जो बातें हमने की हैं उससे रफाकत कायम हो जाएगी। बैठो 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 बैठो।
आओ रामीन, चलें।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा।
एहतियात करनी पड़ेगी। ये लगता चूजा है, लेकिन वकील बड़ा सियाना लगता है।
घेर लिया है।
तुम्हें कैसे पता चला?
अभी।
कहता है कि 50% के सरमाए में बगैर किसी जिम्मेदारी के शरीक होऊंगा, मगर इस शर्त कि उसके बराबर का सरमाया मेरे पास गिरवी रख।
अच्छा है बाबा, अगर आप इनकी जगह होते तो ये काम नहीं करते।
जल्दी चलो।
ये नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहती कि आप उससे बात तक करें। आप ऐसा ना करें, मैं खुद आपको कर्ज लेकर दूंगी। मैं आप ही की वजह से इस मुसीबत में फंसी हूं। आप और आपका लाइलाज दर्द, आखिर मैं क्या करूं? मैं देखती हूं क्या कर सकती हूं। आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूं।
अगर सचमुच ये चेक ले आया तो आप मान जाएंगे?
क्या मैं तुम्हारी तरह बेवफा हूं, कहूं कुछ और करूं कुछ?
तो फिर आप अपनी बात पर कायम रहिएगा।
किस बात पर?
जनाब, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कई दिनों से कह रहा हूं, इस बम के बारे में कुछ करें।
चीख क्यों रहे हो तुम? ये उस जवादी के बच्चे को कहो। जवादी, मैंने तुमसे नहीं कहा कि इसको नया पंप ला दो?
ना।
नहीं? ठहरो जरा, बताता हूँ कहाँ जा रहे हो। मैं कोई खजाने के दरवाजे पर बैठा हूँ कि इस काम के लिए एक आदमी रखूं?
मैंने आपसे कहा था कि मेरी वालिदा बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है।
मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारी वालिदा क्या वाटर के ड्रम में रहती है, जो हर वक्त बीमार बीमार लगाए रहते हो। तुम्हें काम करो, अपनी वालिदा को किसी अस्पताल में भर्ती करवा दो। जब कभी भी वो बीमार होंगी, वहीं दाखिल हो जाएंगी और डॉक्टर उसका बड़े आराम से इलाज कर सकेंगे।
मेरी वालिदा के बारे में जरा संभल कर बात करें।
देखो जरा हसन बाबा है, चुप करके गाड़ी चलाओ, वरना जो मुंह में आएगा तुम्हें कह दूंगा।
अच्छी बात है, कोई बात नहीं साहब, अभी मेम साहब को फोन करता हूँ, सुधार लेंगी आपको, देख लीजिएगा।
क्या सोचता है नहीं मालूम, समझता है कि हम डाकू हैं, जमानती चेकों के बस्ते मांग रहा है, हमारी शक्लों पर चोर लिखा है। सबको फोन करो, सबको फोन करो कि अगले हफ्ते मीटिंग बहुत जरूरी है। ये मत बताना कि क्यों है, सिर्फ ये कहना कि जलील तुम लोगों से मिलना चाह रहा है।
यानी आप मामला करना चाहते हैं?
सबको इत्तला दो, देखूं तो सही उनसे हिफाजती चेक ले सकता हूं या नहीं।
जनाब, काजिम महलूजी साहब आए हैं।
जाइए मोहतरमा, अपना काम कीजिए।
काजिम यहाँ है, क्यों अंदर नहीं आए?
जनाब वो ऑफिस आए और फिर।
आप जाइए अपना काम कीजिए। चले गए, नहीं रुके।
क्या नहीं रुके हैं? उसका भी दिमाग खराब हो गया है? उससे कहना कि 10 बार फोन किया है, जरूरी काम है।
साहब, आपने उन्हें अपने भाई के घर भिजवाया था, क्या किया आपने? अफसोस की बात है, आप अपने आप को देखें। आप जैसा इंसान और वो पत्थर के दौर का आपका भाई बहादुरी कबाड़िया और वो दुनिया बराबर हैं।
काजिम ने क्या कहा है? ओ, मैंने पूछा है, काजिम ने तुमसे क्या कहा है?
आपके भैया सुधरने वाले नहीं, लेकिन इसके लिए गम करने की जरूरत नहीं। काजिम आप पर फिदा, लेकिन माफ कीजिएगा, ये सब आपकी औलाद का किया धारा है।
ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, सही सही बताओ क्या हुआ है।
पता नहीं आपके भाई को उन्होंने क्या कहा और आपके भाई ने उनसे क्या कहा। कहें अब आपको उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। वैसे बादशाह अपनी मुमलिकत की सलाह खुद समझता है ना? बाकी आपकी मर्जी है, एक दिन इस बारे में सबको पता चल ही जाएगा।
सीमा, देखो तो सैयद गफूर धनिये का नंबर है या नहीं। नहीं है? शाहीन को फोन करो।
हाँ, मेरा ख्याल में कोई इश्तेहार विश्तेहार तो दिया है उन्होंने। लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। बाबा, हम तो खुद खत्म रोजगार हैं। इनकी दुकान आखिर कौन दुकानदार खरीदेगा? मार्केट में है ही क्या? हाँ जी, कोई आया तो है। मैं जरा गपशप करता हूं इससे, बाद में आपको फोन करता हूं।
मैं वो दुकान बंद कर रहा हूं, मस्जिद जाऊंगा, बाद में यहां आता हूं या घर नहीं मालूम। मेरी बात सुनो वीना, जो भी फोन करे उससे अगली मुलाकात का वक्त तय कर लेना। मैं इस आने जाने से शक का शिकार हो गया हूं। ठीक है, मैं उससे बात करता हूं। खुदा हाफिज। तो जनाब, आपने देख लिया, किताब रख दें। मैंने अर्ज किया कि यहां मामला करने में मुझे शदीद कराहत महसूस हो रही है।
हुजूर वाला, आप परेशान ना हो, कोई मत बताइए।
आप मेरी खाला के बेटे हैं
जी।
बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाइए।
इतना सख्त रवैया क्यों इख्तियार कर रहे हैं जनाब? दुकानदारी करने के लिए ग्राहकों से नरमी से बात करनी होती है। अब ये तो कोई बात ना हुई ना कि सवाल चुनाव और जवाब कर दो।
ला इलाहा इल्लल्लाह।
जी चाचा जान।
से क्या कह रहे थे?
किससे?
जामाबाजी की जरूरत नहीं, क्या कह रहे थे?
हाँ, उससे। दरअसल मेरी घड़ी खराब हो गई है, मैं उससे वक्त पूछ रहा था। टाइम पूछने में आपको एतराज है?
नहीं, आखिर क्यों तुम कुर्सी लगाकर यहाँ बैठे हो और हर आने जाने वाले से टाइम पूछ रहे हो, धोखेबाज?
अंकल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आइए, आप खुद ही पूछ लीजिए।
और तू ही वो नमक हराम है जो मेरी दुकान के खरीदारों को रोक रहा है। किसने तुझे कहा बेहया? तेरे बाप ने इसी बिल्डिंग का तुझे दरोगा बनाया है, क्यों मेरे पीछे पड़ा है?
यानी क्या हमारी घड़ी खराब भी नहीं हो सकती?
क्या हुआ?
मुझे क्या पता, इन्हीं से पूछ लो। कोई किताब खरीदने आया था इनके पास, मैंने टाइम पूछ लिया तो कह रहे हैं कि तुम मेरी दुकान के खरीदार को जानबूझकर भगाना चाह रहे हो। बोहतान लगा रहे हैं मुझ पर, झूठे कहेंगे।
मैं झूठ बोल रहा हूँ? अंधे कहीं
जनाब, आप ही जाने दीजिए। अरे
झूठा हूँ?
तुम भी दुरुस्त साबित करो, जाने दो। अंकल, बुरा मानने की जरूरत नहीं, ये दुकान बिकने वाली नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर? सब कुछ तो करके देख लिया आपने, बीवी बच्चे तक आपसे नाराज हैं। अपने बेटे को ये दुकान दे दीजिए, समझ में नहीं आती आपको?
मेरी समझ में नहीं आता।
मैं कहता हूँ तुम चुप करो शाहीन। حاجی صاحب آپ ہی خیال کیجیے.
السلام علیکم حاجی صاحب.
وعلیکم السلام.
آپ کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا. آپ ٹھیک ہے نا؟
آپ کی ذرا نوازی.
آپ کے محلے کا بچہ ہوں, اسی گلی میں رہتا ہوں.
ہاں
ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ کی خدمت میں.
ہاں بولو.
جسارت کر رہا ہوں, سنا ہے کہ آپ اپنی دکان بیچ رہے ہیں, وہ جو مارکیٹ میں ہے.
ہاں خدا سے یہی امید ہے. آپ اپنی بات کہیے.
سمجھ نہیں آ رہا کس طرح کہوں. دراصل بات یہ ہے کہ آپ کی شہرت اس محلے میں بہت زیادہ ہے. حق و انصاف یہی ہے جو آپ کے بارے میں نے سنا ہے, اور اس لیے آج آپ کے دروازے پر آیا ہوں. ابھی تازہ زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں, اور میری خواہش ہے کہ اپنی زندگی کا آغاز آپ کی دکان سے کروں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جناب کہ اگر آپ مجھے اپنی دکان دے دیں گے تو میں اپنا کچھ کاروبار شروع کر سکوں گا. کچھ سامان وغیرہ لے کر دکان میں ڈال دوں گا, اور کامیابیاں ملی تو کچھ زندگیاں سنور جائیں گی.
آپ کو نئی زندگی مبارک. کتنا پیسہ ہے؟ با خدا
قربان جاؤں آپ کی سمجھ پر حاجی صاحب, اب تک دکان کا سودا تو نہیں ہوا نا.
مینا کون ہے؟
نہیں ابھی تو نہیں.
اپنی تو چادر تو دیکھ.
حضور والا آپ کو اس ماہ مبارک اور آپ کے روزے کا واسطہ, نہ کیجیے گا. بہت انتظار کیا ہے. حضرت عباس کی قسم, اگر یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ خدا ترس آدمی ہے تو کبھی نہیں کہتا.
ٹھیک ہے, ادائیگی کس طرح کرو گے جب دکان تمہارے حوالے
کی؟ کس کا مال ہے جو بخشا جا رہا ہے جناب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر میں اندھیرا کر کے مسجد میں چراغ نہیں جلایا جاتا. رہا لیجیے
لڑکی.
معاف کرنا آپا, میں علی حضور سے گفتگو کر رہا تھا.
آپ پہلے مجھ سے بات کریں.
تم اندر جاؤ, مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے.
دادا جان آپ اندر آ جائیے. میری دکان کا آپ میری اجازت کے بغیر کسی سے بھی سودا نہیں کر سکتے, سمجھے آپ؟
محترمہ آپ کے دادا ابو کو دودھ پیتے بچے تھوڑی ہے کہ میں ان کو دھوکہ دے دوں گا, سمجھے آپ؟ عورتوں سے کسی خیر کی امید نہیں, کیوں نیکی کی راہ میں حائل ہونا چاہتی ہیں آپ؟
آپ خود کو مرد کہتے ہیں؟ مرد کہتے ہیں, مرد تو وہ ہے جو قارون کے خزانے سے بھی اپنی ضرورت کے مطابق لے کر آتا ہے. تم حضرت عباس علیہ السلام کی قسم کھا کر اپنی حالت خراب بتاتے ہو. اسی مولا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میری حالت تم جو گاڑی والے سے ہو بہت خراب ہے. اپنا نام تو بڑا یہاں سے اٹھاؤ, کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. اگر میں اپنی دکان کو نیاز میں بانٹنا چاہوں گی تو پہلے اشتہار دوں گی, اور اپنی مفت خوری کا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لانا نہ بھولنا.
معاف کیجیے گا لیکن ان عورتوں کے منہ کون لگے؟ پھر کبھی انشاءاللہ بعد میں ہم اور آپ الگ بیٹھ کر اس معاملے میں بات چیت کر لیں گے. لیکن میں آپ اور آپ کے گھر سے بری طرح نا امید ہو چکا ہوں. لیکن آپ اور آپ کی پوتی کبھی کسی سے انشاءاللہ نا امید نہ ہوں.
ٹھہرو ذرا.
کیا ٹھہرو؟ سنو تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ آبرودار محتاج سر جھکا کر بغیر دعا کے اپنی راہ لیتا ہے.
تین
دادا جان بخشش کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. بغیر امید کے خوف خدا انسان کو باولا کر دیتی ہے. ہم معصوم نہیں ہیں کہ ہر ایک کے دل کا حال معلوم کر لیں. میں اور آپ عقل ناقص رکھتے ہیں, مگر یہ عقل ناقص ہمیں اتنا تو بتاتی ہے کہ کون محتاج ہے اور کون گدڑ اور بھیڑیا. اور بتائیے تھا کون کہ جس کو یہ معلوم ہے کہ میں آپ کی پوتی ہوں؟
پڑوسی نے اگر سن لیا تو کیا ہوگا؟ خوش اخلاقی سے بھی یہ کام ہو سکتا تھا, بدتمیزی کی کیا ضرورت؟
معاف کیجیے گا, اگر وقت پہ نہ پہنچی تو اس کی چکنی چکڑی باتیں اثر دکھا گئی تھی.
تمہاری دکان کرنے کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتا.
اخلاق کی بھی حدود ہوتی ہیں.
جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل.
تمہاری بھتیجی تمہاری دال نہیں گلنے دے گی.
دینا
یار کیا بتاؤں, میں تو تمہارے بابا کو ٹوپی پہنا چکا تھا, ایک دم وہ شیر کی بچی آئی اور سب دھرم بھرم ہو گیا.
ابے بدھو کہیں کے, میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ ابا میاں سے اکیلے میں ملنا؟
او شیر چلی, بالآخر کیا ہوتا, میں نے تو اپنی طرف سے 5,000 کا اضافہ بھی کر دیا تھا.
ناصر اس سے کہا تم نے 10 تومان
تو کیا اس میں تمہاری خوبصورت صورت کا اضافہ کرتا؟ جوش مت دکھاؤ, تمہارے بچے دودھ سے محروم رہ جائیں گے.
ابے جا.
किसको फोन कर रहे हैं?
उस लड़के को कहना चाहता हूँ कि उसके वालिद का कुरान तैयार है।
आप इफ्तार करें, मैं जरा फोन मिला लूं।
मुझे पता है मैं नंबर मिला रहा हूँ।
किसी खातून ने उठाया तो?
उठाती है तो उठाने दो। ये दो है या तीन?
दो।
जनाब नाज़मी साहब का घर है। सलाम अलैकुम मोहतरमा, मुझे नाज़मी साहब से काम है। मैं साहब ज्यादा हूं, क्या दोबारा फोन करूं?
काट दे।
सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उनके वालिद का कुरान तैयार है, बस आकर ले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पर हूं।
इनको तैयारी करने दें, बाद में करते हैं।
शायद हजरत ही आकर ले जाए। सलाम अलैकुम, माफ कीजिएगा गलत टाइम पर फोन कर बैठा। मैं ये पूछना चाहता था कि वालिदे ग्रामी तो ठीक है ना?
क्या कह रहे हैं?
मैं समझा नहीं, क्या मतलब है आपका?
बताएं क्या कह रहे हैं आपसे दादा जान।
यानी क्या? कुरान अब नहीं चाहिए? ये कुरान आपकी मिल्कियत है, आपके वालिद की। मेरा काम तो सिर्फ जिल बांधना था।
अच्छी बात है, रहने दें, शुक्रिया करें और काट दें, इफ्तार का वक्त है।
आ जाएं, ये सब जो जहमत उठाई कोई फायदा नहीं हुआ।
मुझे अच्छी तरह याद है आपने कुछ कहा था, पैसों का मसला नहीं, मैं तो इसका खादिम हूं। कुरान की जल्दसाजी का ये काम मेरे घर बरकत लाया है। मगर आपको खुदा का वास्ता, फोन बंद मत कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हेलो हेलो, यानी क्या?
इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में।
फिर शुरू कर दिया तूने।
उठिए आइए इफ्तार कीजिए। आपकी मुश्किल यही कुरान है कि जिसका जुज़दान मैंने सिया, अब कोई पढ़ेगा नहीं कि इसका सवाब मुझे मिल सके। अगर यही हालात रहे तो दर दर कर्ज के लिए फिरना पड़ेगा। चलिए उठिए
दादा जान, उठिए, सब ठीक हो जाएगा। मूसा और हारून ने कहा, परवरदिगार फिरौन की सरकशी से हमें खौफ है। खुदा ने फरमाया, किसी से ना डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ। फिर दोनों फिरौन की जानिब चल दिए। उन्होंने कहा, हम दोनों तुम्हारे परवरदिगार के भेजे हुए हैं, बस बनी इसराइल को हमारे साथ रवाना कर दो, इनको शिकंजा और अजाब ना दो। बेशक हमारे पास तुम्हारे परवरदिगार की अता करदा आयात और निशानियां हैं। सलाम हो उन पर जो राहे हिदायत पर चलते हैं। हम पर वही हुई है कि वो लोग जो खुदा और उसके रसूल को छुटलाते हैं, हक से मुंह मोड़ लेते हैं, सख्त अजाब चखेंगे, सख्त अजाब चखेंगे। मैं खोलती हूँ।
मेरे लिए हमेशा बदखबर रही है। अपना कुरान पढ़ो। कौन? क्यों वहां खड़े हो? अंदर आओ।
अंदर नहीं आऊंगा, यहां तक आ गया यही काफी है। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बस यही कहने आया था। अंदर जाओ, दरवाजा बंद कर लो।
ला इलाहा इल्लल्लाह।
इसी दिखावे की वजह से उस बदअखलाक बहादरी ने कहा कि तुम्हारे पास ना हूं। मेरी बीवी ने मना किया। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सैयद,
मैंने कब तुम्हारे साथ कोई बुराई की है कि ये सिला मिल रहा है? मैंने क्या तुम्हें कोई तकलीफ दी थी?
कौन सी बुराई, क्या सिला?
कौन सा सिला? मैंने तुमसे कहा था किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली है और वो वापस ले आएगा, कि तुमने जाकर अपने भैया से मेरी शिकायत कर डाली। तुम सैयद हो, तुम एक नेक और शरीफ आदमी हो, हम सबके लिए नहायत काबिले भरोसा इंसान हो, मोमिन हो। मैंने तुम्हें तुम्हारी मरहूमा बीवी और मरहूम बेटे की कसम नहीं दी थी कि हमारी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आया है?
किसी से कुछ ना कहना।
वल्लाह बिल्लाह पीर और पैगंबर की कसम, मैं भैया से मिला तक नहीं, उनसे शिकायत किस तरह कर सकता हूँ?
बस तेरी माँ ने तेरे हरामखोर गिद्ध भाई तक ये बात पहुँचाई है और रयाकार कब्र में पांव लटक रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आती? तू दो कदम आगे बढ़ दो, तेरी से ठुकाई लगाऊं तो चारों तबक रोशन हो जाएंगे।
अब तुमने उसको बता दिया और लेकर चले आया?
हाँ, मैं साथ आया हूँ ताकि ये बदबख्त तेरी बातों में ना आ जाए। आया हूँ ताकि पीठ पीछे ये ना कह सको कि बहादुरी डाकू भाई से पैसे हटता है और इसका कोई हक नहीं है।
खामोश रहे बहादुरी, तू खामोश रहे। हाजी, मैंने हजार मर्तबा अपने जद की झूठी कसम खाई होगी, मगर रोजे कयामत पर मेरा ईमान है। सिर्फ ये जान लो कि आज शब कद्र है, मेरी बीवी शब्बेदारी करेगी और इसकी जबान पर सिर्फ आओजारी के अलावा कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है इसी शब कद्र के सदके में इसी दुनिया में इसका मजा चखो और इंशाल्लाह तुम चखोगे।
अस्तग़फिरुल्लाह।
अपनी बीवी की शब्बेदारी की बातें लेकर बैठ गया ये बदबख्त कल्लाश, तो सिर्फ इस बात पर खुश है कि लोग आते जाते इसको सलाम करें और ये इन्हें जवाब दे वालेकुम सलाम।
तुम सर से पांव तक टेढ़े हो, ऑल फॉल के सिवा और कुछ आता है तुम्हें? हाँ,
तुम्हारे भैया ने इस बदबख्त और बेचारे के घर आदमी भेजा कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहादुरी उसके घर वालों को कुचल दूंगा। ये ऑल फॉल है, ये बकवास है, मैं झूठ बोल रहा हूँ।
जलील ने भेजा? किसको?
आओ चलो धनिये की औलाद, ये बदबख नाटकबाज नौटंकी कर रहा है, चलो आओ।
कोई बात नहीं हाजी, कोई बात नहीं।
सैयद गफूर, तुम दुकान पर लगे बराए फरोख्त के इश्तिहार को देख सकते हो? दो रोज हुए हैं, एहसान करना नहीं चाहता लेकिन उसको बेचकर भैया से जो कुछ भी तुम्हारा जिसका जो बनता है वो अदा कर दूंगा।
तुम क्या करोगे?
इसके अलावा चारा नहीं है। डरता हूं कहीं ये माजरा मुबादा तंग ना हो जाए। सैयद औलाद रसूल, मुझे नहीं मालूम कि भैया को यह कैसे मालूम हुआ कि दुकान की फरोख्त का पैसा तुम पर खर्च करना चाहता हूँ। उसने अपने बेटे को चौकीदार बनाकर बिठा दिया, जो भी खरीदार आता है वो भगा देता है और तुम ये सोचते हो कि मैं उसका मुखबिर हूँ।
वही पस्त फितरत इसके घर आया था कि गाड़ी जहाँ छुपाई है उसकी जगह बताओ या सूद का पैसा दो, जैसे चाहे दो, वरना जमानती चेक पुलिस के हवाले कर देंगे, एक हफ्ते से ज्यादा मोहलत नहीं देंगे।
मैं सोचता हूँ कि शायद थोड़ी सी गैरत तुम में बाकी है, जाकर उससे कहो कि मैंने नहीं कहा। और ये जो झूठ तुम कह रहे हो, इंशाल्लाह इस पैसे से किसी की गिरा नहीं खुलेगी। इस कुरानी रात के हक के वास्ते तुम इससे किसी का हक वापस नहीं कर सकते। तुम देखना ये पैसा किसी के काम नहीं आएगा।
ये समझता है कि ये दुकान जो खुदा खुदा करके इसके हाथ आई है इतनी रकम दे जाएगी कि सबका हिसाब साफ हो जाएगा, तो दुनिया में इसी के पैसे घट रहे हैं। नाराज ना होना, अगर रोने धोने और दुआ से काम हो जाता तो इस बदबख्त के गिरिया से सैलाब आ जाता और तुझे और तेरे खानदान को बहा कर ले जाता। इससे मेरा पैगाम दे देना कि बहादुरी का इंतजार करे, जैसे ही मैं ठीक हुआ किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को देख लूंगा। तुम कहां जा रहे हो?
इससे पहले मैं इसलिए नहीं आई कि दादा जान को तुम्हारी हकीकत मालूम हो जाए, जरा बराबर भी इन लोगों से नेकी की उम्मीद नहीं। दादा जान आप पछताना मछताना छोड़िए और अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालिए, ये इस काबिल नहीं है।
अरे कसूर मेरा है, अपने बड़े भाई जलील के दरबार में जाकर रू बरू होने से बेहतर मैं ये समझता था कि दुकान बेच दूं, रफाए तकलीफ कर दूं। मुझे क्या मालूम कि अब मैं बेतनाई का शिकार हो जाऊंगा।
اب کوئی میرے ساتھ قرآن نہیں پڑھے گا، اب جب میں قرآن پڑھوں گا تو کوئی میرے ساتھ قرآن نہیں پڑھے گا۔ قرآن میرے بھائی کو فرعون کا مصداق ٹھہرا رہا ہے، نہیں معلوم کہ خدا مجھ سے کیا امتحان لینا چاہتا ہے۔
دادا جان، یہ فرعون کون ہے؟ دربار کیا ہے؟
حکم ہوا فرعون کی جانب جاؤ اور کہو ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، بس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو، ان کو شکنجہ اور عذاب نہ دو، بے شک ہمارے پاس تمہارے پروردگار کی عطا کردہ آیات اور نشانیاں ہیں، سلام ہو ان پر جو حق کی پیروی کرتے ہیں۔